Godlywood Studios presents Brahmakumari's podcast. समाधान बीके सूरज भाई के साथ।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, श्री कृष्ण जी अर्जुन जी के साथ एक बार यात्रा पे भ्रमण पे निकले हुए थे। अर्जुन जी ने देखा कि एक ब्राह्मण भिक्षा मांग रहा है, उन्हें दया आ गई और उन्होंने सोचा कि चलो इन्हें मैं कुछ स्वर्ण मुद्राएं दे देता हूँ। उन्होंने स्वर्ण मुद्राएं उस ब्राह्मण को दी। जब वो ब्राह्मण जी स्वर्ण मुद्राएं लेके जा रहे थे तो भविष्य के लिए बड़े बड़े सपने बुन रहे थे कि अब तो मेरा जीवन बड़ा अच्छा हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा, परिवार में सब सुखी हो जाएंगे, बड़ा आनंद आएगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा। रास्ते में एक लुटेरा आया और वो स्वर्ण मुद्राएं छीन के चला गया। अब फिर से वो भिक्षा मांगने लगे, बहुत दुखी हुए। अब अर्जुन जी फिर से जब गुजर रहे थे श्री कृष्ण जी के साथ, दूसरे दिन उन्होंने देखा कि अरे इसको इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं दी थी, फिर से कैसे भिक्षा मांग रहा है। पूछा तो ब्राह्मण ने सारी अपनी जो बात थी, कथा थी, व्यथा थी वो सुना दी। अब इस बार अर्जुन जी ने एक माणिक उनको दिया कि ये माणिक तुम रखो, ये भी बहुत कीमती है, इसे बेच करके तुम अपना जीवन अच्छे से गुजार सकते हो। अब ये ब्राह्मण देवता अपने घर गए और घर में एक पुराना सा मटका रखा हुआ था, उसमें उन्होंने रख दिया छिपा के कि कल जाके इसका सौदा करूँगा। ब्राह्मण की पत्नी पानी भरने जा रही थी, उनका घड़ा टूट गया। अब वापस वहीं वो देखी कि घर में पुराना सा घड़ा रखा हुआ है, उसे लेकर के वो गई और जब नदी में उन्होंने डाला उसे भरने के लिए पानी, तो माणिक वापस नदी में चला गया। अब फिर से ब्राह्मण देवता की वही स्थिति हो गई कि वो फिर से भिक्षा मांगने लगे। अब जब वापस ये श्री कृष्ण जी अर्जुन जी के साथ जा रहे थे, देखा कि ये तो फिर वही स्थिति हो गई है और फिर से वही कथा, वही व्यथा। अर्जुन जी ने सोचा कि शायद इसकी स्थिति बदलेगी नहीं, शायद इसके भाग्य में सुख नहीं लिखा हुआ है। अब कृष्ण जी ने मुस्कुरा करके 2 पैसे उस ब्राह्मण को दे दिए। अब ब्राह्मण जी ने ले तो लिया, लेकिन जाते जाते सोच रहे थे कि प्रभु ने बस 2 पैसे मुझे दिए, इस 2 पैसे से मेरा क्या होगा, अब क्या करूँ मैं इस 2 पैसे से। एक मछुआरा वहाँ से गुजर रहा था, उसकी जाल में एक मछली थी जो छटपटा रहे थे। अब ब्राह्मण ने सोचा कि इस 2 पैसे से मेरा भरण पोषण तो कुछ होना नहीं है, क्यों ना मैं एक शुभ काम करूँ कि इस मछली को छुड़ा लूँ। 2 पैसे दिए उस मछुआरे को और मछली को छुड़ा लिया, अपने कमंडल में डाला, पानी डाला और सोचा कि इसे मैं नदी में जा करके छोड़ दूंगा। जैसे ही कमंडल में डाला, पानी डाला, उस मछली के मुख से कुछ निकला। वो वास्तव में वो माणिक ही था, जो माणिक वो मछली निगल गई थी। अब जैसे उस माणिक को देखा उस ब्राह्मण ने, तो बहुत खुश हुआ और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया मिल गया। और वहीं से वो जो चोर था, वो जिसने छीन लिए थे धन ब्राह्मण से, वो भी गुजर रहा था। उसे लगा कि ब्राह्मण ने शायद मुझे देख लिया, तो वो आके इनके पैर पकड़ लिया, बोले कि आप दरबार में मुझे मत ले जाइएगा, मैं आपके सारे धन वापस करता हूँ। सारे धन उन्होंने वापस कर दिए। ये दृश्य श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी दोनों देख रहे थे। अर्जुन जी को बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि प्रभु आपकी लीला तो बड़ी अपरंपार है, लेकिन ये हुआ कैसे। तो श्री कृष्ण जी ने एक बहुत ही सुंदर बात बताई मित्रों, जो हम सबके लिए भी बहुत हितकर है, चिंतनीय है। उन्होंने कहा, देखो जब तुमने इसे धन दिया था तो ये केवल अपने सुख के बारे में सोच रहा था कि अब मैं भविष्य में जाकर के बड़ा सा घर बनाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन जब मैंने इसे 2 पैसे दिए तो ये अपने लिए नहीं सोच रहा था, ये परहित के लिए सोच रहा था कि इस पैसे को मैं कैसे परहित में लगाऊं। और सचमुच इसने परहित में उसे लगाया और वहां से इसका भाग्य बदल गया, करवट बदल गई। तो वास्तव में मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि हम केवल जब अपने लिए सोचते हैं तो कहीं ना कहीं सब चीज़ों का नुकसान भी हो जाता है, हम दुखी भी होते हैं, सुख नहीं प्राप्त कर पाते। लेकिन जब हम औरों के दुख के बारे में सोचते हैं, औरों को सुख देने के बारे में सोचते हैं, तो वास्तव में हम ईश्वर का कार्य कर रहे होते हैं और सुख हमारे दर पे बिना बुलाए ही आ जाता है। तो क्यों ना हम सब भी औरों के लिए जिएं, औरों के लिए सोचें, औरों का भला करें, तो हम जो चाहते हैं कि हमारा जीवन समस्याओं से मुक्त हो, सुखमय हो, तो वो सहज और सरल हो जाएगा। ऐसे सुंदर प्रसंग के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं, अभिनंदन करते हैं भ्राता जी का। भ्राता जी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। इस प्रसंग के बारे में क्या कहेंगे भ्राता जी?
हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब बात सुन के। देखिए, मनुष्य यदि दूसरों के दुख को समाप्त करने के लिए कुछ सोचने लगे तो उसके दुख स्वतः ही समाप्त हो जाए। देखिए, उसके पास 2 ही पैसे थे। वो सोचता तो ये भी सोच सकता था कि घर जाऊंगा, थोड़ा सा, तब दो पैसे कीमत
कुछ तो मिल जाए,
अनाज ले आऊंगा, कुछ सब्जी लूंगा। लेकिन उसने ये ना सोचकर ये सोचा कि मछली को मुक्त कर दूं इससे, और देखिए उससे उसका कितना भला हो गया। ये सत्य है, यही पुण्य कर्म है कि मनुष्य जब दूसरों को सुख देने के बारे में सोचने लगता है, जब उसके चित्त में दूसरों की भलाई करने के विचार उभरने लगते हैं, तब उसका कल्याण स्वतः ही हो जाता है, उसकी दरिद्रता भी नष्ट हो जाती है, उसका दुर्भाग्य भी श्रेष्ठ भाग्य में बदल जाता है। इसी बात की आज संसार में सबको बहुत जरूरत है, क्योंकि आज आज जो सबसे बड़ी एक दुर्गति वाली बात हो गई है कि हर मनुष्य स्वार्थी है, इवन घर में भी पैसे की बात नहीं, हर व्यक्ति सोच रहा पहले मैं, दूसरे का कुछ हो या ना हो पहले मैं। तो इससे अगर मनुष्य निकल जाए, और उसके लिए चाहिए स्पिरिचुअलिटी, हमारे यहाँ तो बाबा ने पहले से ही सिखाया था, पहले सदा कहो पहले आप, बहुत अच्छी ये बात सिखाई कि इसे छोटे से देखे, दो तीन शब्द हैं, पहले आप, दो ही शब्द हैं, इसमें कितना सुंदर रहस्य भरा हुआ। एक मैनेजमेंट ही संवर गया, एक आपसी जो वातावरण था उसमें ही स्वीटनेस आ गया,
प्यार आ गया
जी जी। और जहाँ ये कहता है कोई मैं मरे पहले मैं तुम भूखे रहो या कुछ भी रहो पहले मेरा पेट भरे, वहाँ एकदम सब कुछ कैसे बिगड़ जाता है। समाज में, परिवारों में, व्यक्तिगत जीवन में इसकी आज बहुत आवश्यकता है, जो हम चर्चा कर रहे थे पहले भी, कि सुख मनुष्य कहाँ ढूंढ रहा है, पर सुख मनुष्य को देने में प्राप्त होगा ना।
बिल्कुल, और कहा भी गया किसी गीत में है प्रता जी, कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तुझी है दिल जमाने के लिए। तो जब दूसरों के लिए जीते हैं तो सचमुच वो सुख, वो आनंद, उसकी मतलब अनुभूति कुछ और ही होती है।
अब क्या होगा, आजकल गीत भी तो ऐसे नहीं बनते ना
ये पहले के गीत
गीत है, अब तो वाह हू वाह वाह।
ये पहला मेल हमारे पास भेजा है सनीशा जी ने, ये कहती है ओम शांति भाई जी, मेरे पापा का बहुत साल पहले, लगभग 30-35 साल पहले, उनका अपने किसी समीप रिश्तेदार के साथ किसी कारण से झगड़ा हो गया और मेरे पापा को उन्होंने बहुत जोर से थप्पड़ मार दिया, और पापा ने उस समय ही उन्हें एक श्राप दे दिया था कि तुम्हारे हाथ पैर ठंडे हो जाएं, मतलब खराब हो जाएं, और जी जी मतलब काम ना करें। अब उसके बाद अभी जिनको उन्होंने ये कहा था, अब वो बिस्तर पे आ गए हैं और सचमुच ऐसा हो गया है कि उनके हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं। तो इस बात से पिताजी को बहुत तकलीफ होती है, उन्हें लगता है कि मेरा श्राप इन्हें लग गया है, तो क्या उनके लिए किया जा सकता है ताकि वो इस श्राप से मुक्त हो जाएं, उनके हाथ पैर पुनः की तरह अच्छे हो जाएं। समीशा जी,
आयत भी लोग श्राप में इतना विश्वास तो नहीं रखते, लेकिन ये जो बद्दुआएं हैं, कभी कभी एक ऐसा समय होता है कि मुख से निकले हुए वचन सत्य हो जाते हैं, सदा नहीं होते, लोग इसको रिजेक्ट भी कर देते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं कि इन सबसे कुछ नहीं होता, तो बहुत बातों में होता भी नहीं। लेकिन वो ऐसा समय था, एक बहुत डीप फीलिंग के साथ वो बोल उनके मुख से निकल गए, और सुनने वाले ने भी डेफिनेटली उनको रिसीव कर लिया होगा, तो कुछ समय के बाद उसका परिणाम दिखने लगा। वैसे तो गलती उसकी थी, अभी मारना नहीं चाहिए इस तरह, लेकिन इनको भी गुस्सा आया और इन्होंने भी ऐसे वचन बोल
दिया, और ऐसा हो गया, तब लग रहा है कि मेरे कारण ऐसा हुआ,
भले ही वो कारण न भी हो, पर क्योंकि बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है ना, प्रत्यक्ष हो रहा है, तो इसको लगता है कि मेरे कारण। अगर मुझे ऐसा लगता है कि जब से इन्होंने उसको ये कहा था, तब से इनके मन में वो फीलिंग चली आ रही थी कि कहीं हो ना जाए, इसलिए इनको याद है, नहीं तो मनुष्य याद नहीं रखता, गुस्से में रोज कुछ कुछ बोलते हैं लोग, सब भूलते रहते हैं, समझते हैं ये बात तो कॉमन है, किसी को कुछ कह दिया, किसी को कुछ। अभी चलो, अगर इनका श्राप ही है तो इसको ब्लेसिंग्स में बदलना है। एक तो उस व्यक्ति को भी ये करना चाहिए जिसकी ये स्थिति बनी है, कि वो मन ही मन इनसे क्षमा याचना करे, और अब तो ये हैं प्रैक्टिकल में, ये भी रियलाइज कर रहे हैं, और उनको भी डेफिनेटली वो बात याद होगी, तो इनको बुलाकर भी वो इनसे सच्चे मन से क्षमा याचना कर ले, और ये भी संकल्प करें कि तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा भविष्य बहुत सुंदर हो, तुम संपूर्ण हेल्दी हो जाओ, तुम बहुत सुखी हो जाओ, इसी से बाहर आ जाओ, ये भी ऐसा करें। और योग अभ्यास इसमें इनको बहुत मदद करेगा, कि अभी इनके मन में रहम की भावना है, ये बहुत अच्छी बात है, नहीं तो लोग ये भी सोच सकते
हैं कि देखा मैंने श्राप दिया था,
लोग बिल्कुल खुश होते हैं कि देखा ऐसे को ऐसा ही होना चाहिए इसने मेरी इंसल्ट की थी, मैं बड़ा भी हूँ फिर भी इसने थप्पड़ मारा था, ठीक हुआ, बहुत अच्छा, लोगों को इससे लेसन मिलेगा। लेकिन ये इनमें अच्छाइयाँ हैं। और इस अच्छाई का प्रैक्टिकल स्वरूप यही है कि इन्हें फील हो रहा है कि इनके द्वारा भी गलती हो गई, किसी मनुष्य का जीवन इस तरह दुखी हुआ, और एक का जीवन तो दुखी नहीं होता ना, उसमें सारा परिवार जुड़ा रहता है। तो ये उसको 21 दिन तक आधा घंटा योगदान भी कर दें तो उसको गुड वाइब्रेशंस चले जाएंगे। और अगर दोनों ऐसा करते हैं तो मैं समझता हूँ 21 दिन में ही स्थिति काफी सुधर सकती है।
बिल्कुल राधा जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो लगातार श्राप ही देते रहते हैं, चाहे वो बड़े हैं या कुछ लोगों की आदत ही ऐसी हो जाती है, तो एक डर सा बना रहता है कि कहीं इनकी जो जुबां है, जो गंदी जुबां है, कहीं लग ना जाए। तो क्या ऐसा होता है कि यदि कोई लगातार हमें कुछ ऐसा कह रहा है तो हमारे साथ घटित हो जाता
नहीं,
है, उसे काटने के लिए भी क्या कुछ किया जाए?
नहीं, ऐसा होगा ही नहीं। जो व्यक्ति इस भावना के साथ बोल रहा है कि मैं श्राप दे रहा हूँ तुम्हें, उसका श्राप तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि श्राप या वरदान, सच तो ये है, देखो ऋषियों के लिए प्रसिद्ध है कि भाई फलाने ऋषि ने उसको श्राप दे दिया, लेकिन परिणाम भी है कुछ कि श्राप देते ही इसकी तप की शक्ति समाप्त हो गई। तो एक तपस्वी किसी को वरदान या श्राप इस तरह दे सकता है। पहले वाला केस अलग था, वो फीलिंग सहित बोल दिया था और वो समय की बात थी, वो लग गया। लेकिन हरेक के कुवचन लगने लगे तो संसार ही नष्ट हो जाए। तो माताएं खूब श्राप देती हैं दूसरों को, तुम्हारे भाई मर जाए, तुम्हारा पति मर जाए, तुम्हारे बच्चे मर जाए, इससे कुछ होने वाला नहीं। हम इसको साथ साथ रिजेक्ट कर दिया करें और बिल्कुल अपने को अच्छी फीलिंग्स में रखें। और शिव बाबा ने तो हमें एक बहुत अच्छी बात सुनाई, इसको श्राप न कह के बद्दुआएं कह लें, कि तुम्हें कोई एक बार बद्दुआ दे, तुम रिटर्न में 10 बार दुआएं दे दो, तो उसकी बद्दुआओं के जो वाइब्रेशंस आ भी रहे हों वो कट के उसको तुम्हारी ओर से अच्छे वाइब्रेशंस चले जाएंगे और उसको भी फील होगा, रियलाइजेशन होगा कि आई एम रॉन्ग समवेयर, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए।
लेकिन जब कोई ऐसा करता है ब्रदर जी, तो दिल से वो दुआएं नहीं निकलती, भले चलिए हम कुछ बोले ना सही, लेकिन दिल से उसके लिए कुछ दुआएं निकले, ऐसा बहुत कम होता है।
इसी के लिए स्पिरिचुअलिटी की आवश्यकता है, जो हम हमेशा बात करते हैं कि मनुष्य को स्वमान में स्थित रहना चाहिए। स्वमान ये है, मैं एक महान आत्मा हूँ, रियलाइज करें मैं बड़ा हूँ, बड़ी हूँ, मैं पूर्वज हूँ, मैं बहुत महान हूँ, मैं तो भगवान की संतान हूँ, उसका काम वो करे, मेरा काम मैं करूं, मैं बड़ा हूं, मैं महान हूं, तो मुझे तो सबको दुआएं देनी है, और जो अकल्याण कर रहे हैं, जो अपकार कर रहे हैं, उन पर भी मुझे तो उपकार करना है। अपने मन में, चित्त में ये बात समाते रहें तो बुरा बोलने वाला वो वैसा ही रह जाएगा और दुआएं देने वाले बहुत महान बन जाएंगे, ऊपर उठ जाएंगे।
बिल्कुल, और हमें इसी महानता की
ये हमें करना ही है। यदि ये काम कठिन होता है तब उसके प्रति ग्लानि होती है, अच्छा ये मुझे ऐसा कहता है, और नहीं, हाँ और नहीं, ना भी बोले तो मन में उसके लिए, कितना भी अच्छा व्यक्ति हो, चलो ना बोले, बदला न लूं, तो एक न्यूट्रल भाव तो हो ही जा रहा है, छोड़ दो, चलो भाई ये इसका काम है, बोलते रहना। लेकिन हम अपने लेवल को ऊपर उठाकर उसको दुआएं दे दें, ये थोड़ी हायर कॉन्शियसनेस की बात है, बहुत अच्छी स्पिरिचुअलिटी की बात है, और इससे निश्चित रूप से हमें, पहले हमें बहुत फायदा होगा, हम उन चीजों के इफेक्ट से मुक्त भी रहेंगे और हमारा लेवल भी बहुत ऊंचा हो जाएगा।
अगला मेल हमारे पास ब्रदर जी आया है, ये कहती हैं कि मैं नेहा हूँ, हरियाणा से हूँ, बीबीए कर रही हूँ, और सेकेंड ईयर में मेरा एक पेपर अटक गया था, वो मैंने दिया, फिर से मैं असफल रही, दोबारा दिया, फिर से असफल रही, तीसरी बार भी दिया, फिर भी मैं फेल हो गई। अब मेरे पास केवल एक लास्ट चांस है, लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई है कि मैं एग्जाम को लेकर के डरने लगी हूँ और मेरा मन भी अब उस पढ़ाई में नहीं लग रहा है। कृपया मुझे बताएं कि मुझे ऐसे में क्या करना चाहिए, क्योंकि मन भी पढ़ने में नहीं लग रहा है और एक डर का भाव भी है, और केवल 20 दिन रह गए हैं मेरी परीक्षा को, क्या करूँ?
इन्हें ये देखना पड़ेगा कि इनका मन क्यों विचलित है, कहीं इन्होंने अपने को अटका तो नहीं दिया है, या इनकी बुद्धि का लेवल तो ऐसा नहीं है कि बहुत मेहनत के बाद भी इनको सफलता नहीं मिल रही, या वो चीजें याद नहीं होती
है। एक ही पेपर है ब्रदर जी और 3 बार उसमें असफल हो गए।
मुझे तो ये बात सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है कि इतनी अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि चलो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चौथी बार भी, अब और क्या करेंगे ये एजुकेशन वाले, ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो एक समय था जब हम पढ़ते थे, एक बार किसी सब्जेक्ट में जो फेल हो गया तो उसको पूरा साल फिर उसी में बाहर अगले ही साल वो एग्जाम दे सकता है, तो बहुत अच्छे ऑप्शन रख दिए गए हैं। अच्छी बात है, इनको फिर से मेहनत करनी है, रोज सवेरे उठकर 7 बार, 20 दिन तो बहुत हैं, 21वें दिन एग्जाम है तो 21 दिन ही अभ्यास करेंगे। सवेरे उठकर मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन इनके मन में जो असफल होने के बाद निराशा है उसको इनको हटाना ही पड़ेगा। बिल्कुल ये करना पड़ेगा कि अब ये लास्ट अटेम्प्ट जो है इसमें मैं सफल होकर ही दिखाऊंगी। अब भगवान की शक्ति मेरे साथ है, मुझे सफलता मिलेगी ही। ये निगेटिविटी या जो ये काले बादल आ गए हैं, आएंगे मनुष्य के पास, क्योंकि 3 बार हो चुका है ना, तो इसको इनको हटाना पड़ेगा। और एक बहुत अच्छा अभ्यास जो हम विद्यार्थियों को सिखाते हैं, रोज जब ये स्टडी प्रारंभ करें तब ये अभ्यास करें, मैं आत्मा स्वराज अधिकारी हूँ, मन बुद्धि की मालिक हूँ। ये गुड फीलिंग दे अपने को, मैं आत्मा हूँ, मन बुद्धि की मालिक हूँ, तो मैं राजा हो गई। इसको कहते हैं स्वराज अधिकारी। मन बुद्धि मेरे अधीन है, तो अपने मन को भी काम दे, बात करें, तुम शांत रहो, तुम्हारे कारण मुझे बहुत असफलता मिल रही, तुम बहुत भटकते हो, शांत हो जाओ। बुद्धि को भी आदेश दें, अब तुम मेरी बहुत अच्छी बुद्धि हो, मेरी गुड फ्रेंड हो, अब जो मैं पढ़ूं तो सब कुछ याद कर लेना, और परीक्षा के समय उसे इमर्ज कर देना। दिन में 4-5 बार ऐसा अभ्यास 1-1 मिनट के लिए कर लें तो बौद्धिक क्षमता बढ़ जाएगी और मन जहाँ कहीं भी भटकता है वो भी ठीक हो जाएगा। साथ में मैं इनको एक चीज सजेस्ट अवश्य करूँगा जो हम सदा बताते रहते हैं, इनकी इन बातों से स्पष्ट है कि इनके ब्रेन का लेवल थोड़ा कमजोर है, तो ये अपने ब्रेन को एनर्जी देंगी, वही मैं मास्टर सर शक्तिवान हूँ 3 बार याद करके। लेफ्ट राइट हाथ रखेंगे 1 मिनट, बिल्कुल पीसफुली आंखें बंद करके ब्रेन को एनर्जी जा रही है, और संकल्प करें मेरा ब्रेन बहुत अच्छा हो रहा है, मेरी बुद्धि तीव्र हो रही है, ऐसा 10 बार, तो इससे इनका बुद्धि का लेवल भी कुछ इम्प्रूव होगा
जी।
और स्वराज अधिकारी का अभ्यास करने से इनकी बुद्धि ग्रहण करने लगेगी, और सवेरे जो मैंने अभ्यास बताया उससे इनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इनसे जो वाइब्रेशंस फैलेंगे ना वो काम करेंगे बहुत इन्हें सफलता दिलाने में
जी।
हमारी तो श्रेष्ठ भावना है कि इस बार ये संपूर्ण रूप से सफल हों, क्योंकि जीवन एक ऐसी सुंदर यात्रा है, इसमें इस तरह का होना और एक अच्छे विद्यार्थी के लिए जो कुछ बनना चाहता है बहुत ही बुरी बात होती है, तो निराशा के बादल छटे और इनकी सफलता का सूर्य उदय हो।
बिल्कुल, शुक्रिया आपकी शुभ भावनाओं के लिए व्रता जी। हमने पहले भी एक चर्चा की है, विद्यार्थी किसी एक सब्जेक्ट में थोड़े से वीक रहते हैं, कमजोर रहते हैं, और वही विषय उन लोगों को थोड़ा सा पीछे कर देता है, तो तब भी हमारी चर्चा हुई थी, फिर भी थोड़ा प्रकाश चाहूंगा, क्योंकि एक और हमारी बहन है जो फोन करती रहती हैं, 2 बार उन्होंने PMT का एग्जाम दिया लेकिन फिजिक्स में थोड़ी सी कमजोर है, तो वो रह जाता है, बाकी सब क्लियर हो जाता है।
जैसे मैंने स्वराज अधिकारी की बात बताई, क्योंकि बुद्धि तो है, अब देखिए उनकी 3 सब्जेक्ट में बुद्धि अच्छा काम कर रही है
जी,
लेकिन फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में या इंग्लिश में उनकी बुद्धि ठीक से काम नहीं कर रही, रिसीव नहीं कर रही, पिकअप नहीं कर रही है चीजों को, तो वो इसको एक्टिवेट कर सकती हैं सवेरे उठकर। वैसे 7 बार याद करें मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्व शक्तियों की मालिक हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मन बुद्धि की मालिक हूँ, स्वराज अधिकारी हूँ मैं आत्मा। अब अपनी बुद्धि से बात करें, हे मेरी बुद्धि, तुम इस सब्जेक्ट में भी बहुत इंटेलिजेंट हो, जो भी सब्जेक्ट उसका, ये विषय भी तुम्हारी रुचि का विषय है, अब तुम इसमें भी संपूर्ण सफल हो जाओगी। इस तरह के संकल्प करने से ब्रेन की वो शक्तियाँ एक्टिवेट हो जाएंगी और उस सब्जेक्ट में भी काम करने लगेंगी। बहुत अच्छा संकल्प करें, मुझे इस सब्जेक्ट में बहुत रुचि है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट बहुत रुचिकर है, मैं इसमें बहुत होशियार हूँ, मैं इसमें पूरी सफल हो जाऊंगी। इस तरह के संकल्प करने से वो जो डल पड़ी है वो फील्ड, उसकी बुद्धि का वो केंद्र, वो जागृत हो जाएगा।
बिल्कुल, चलिए हम सबकी शुभकामना रहेगी भ्राता जी कि इस बार जरूर वो क्लियर कर लें, क्योंकि फिर मन में निराशा का भाव बच्चों के बैठ जाता है, फिर वो कई बार पढ़ाई भी छोड़ देते हैं इसके कारण कि मैं ये शायद नहीं कर पाऊंगी। भ्राता जी, अगला मेल हमारे पास आया है कोमल भगत जी का, और ये कहती हैं कि मैं विद्यालय से बहुत देर से जुड़ी हुई हूँ और मैं परमात्मा के महावाक्य सुनती हूँ जिसमें वो कहते हैं कि जो लास्ट में आए हैं वो भी फास्ट जा करके फर्स्ट में आ सकते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है कि मैं अब लास्ट में आई हूँ तो मैं भी बहुत अच्छा पुरुषार्थ करूँ और फर्स्ट में आ जाऊँ, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? कोमल जी हैं।
हाँ, जो भी लास्ट में आने वाले हैं, सबको इच्छा होती है, जिनके मन में उमंग बहुत है, एकदम ईश्वरीय नशा चढ़ जाता है, अरे हम तो अभी आए हैं, जो 50-60-70 साल से चल रहे उन्होंने तो बहुत अचीव कर लिया, हम तो बहुत पीछे रह गए। लेकिन ये रोज सवेरे अमृत वेले उठकर अच्छा योग अभ्यास करें, ऐसा नहीं कि वो 2 बजे उठने लगे। मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ, कई बार अति उमंग में 2 बजे उठने लगते हैं, फिर 2-4 दिन ही उठते हैं, फिर 6 बजे उठते हैं। इसलिए एक बैलेंस्ड लाइफ, 4 बजे उठकर बहुत अच्छा योग अभ्यास, 4 से 8 का जो सवेरे का समय है, इसको सुंदर स्थिति में, सुंदर चिंतन में, श्रेष्ठ स्वमान के अभ्यास में व्यतीत करें, ईश्वरीय महावाक्य सुने, और सारे दिन का एक चार्ट बनाइए, चाहे 1 पॉइंट चार्ट बनाए, चाहे 3 पॉइंट चार्ट बनाए, जिसको फॉलो करना है इन्हीं सारे दिन में, और लक्ष्य बना लें, मुझे शुरू में अपने योग का चार्ट 4 घंटे तक ले जाना है, उसमें कर्म योग ज्यादा हो बैठ के थोड़ा थोड़ा करें, अगर इनके पास टाइम है तो 20-20 मिनट 3 बार बैठें, अमृत वेले अच्छा योग करें, तो सारा दिन बहुत अच्छा लिंक बना रहेगा, रुचि बढ़ती जाएगी योग अभ्यास के लिए। फिर इस 4 घंटे योग को बढ़ाकर इन्हें 8 तक ले जाना है, लेकिन 6 मास में ले जाना है, ऐसा धीरे धीरे बढ़ाए। देखिए, एक दिन में यदि 5 मिनट बढ़ा दिया जाए तो 12 दिन में 1 घंटा बढ़ जाएगा, और बहुत जल्दी प्रोग्रेस होगी।
कई बार ऐसा हाँ, भी तो होता है कि कम भी होता,
बिल्कुल इसमें रुकावट भी आएगी, और फिर इनको जैसे हम चर्चाएं कर चुके हैं बहुत पहले, तपस्या पर जब हमने चर्चा की, अपने को चेक करना होगा कि मैंने क्या देखा, क्या सोचा, किधर मेरी वृत्ति गई, क्यों मेरा मन भटक गया, ये सब जांच करके उसे ठीक करना होगा, अंतर्मुखी करना होगा, आत्मिक दृष्टि अपनानी होगी, थोड़ा सांसारिक इच्छाओं से अपने को परे करना होगा। इस तरह यदि ये थोड़ा सा एक सिंपल प्लान बनाए और स्ट्रिक्टली उस पर चलें, तो 6 मास में इनका योग अभ्यास बहुत अच्छा हो जाएगा। बस एक सिंपल एंड प्रैक्टिकल प्लान होना चाहिए, अति अति नहीं, अतिवादिता जिसे कहते हैं ना, वो नहीं
जी, जी।
तो जरूर ये लास्ट में आकर भी फास जाएगी। और ऐसे बहुत सारे पुरुषार्थ थे जिनको हम जानते हैं, जो 1-2 साल से आए हैं और बहुत अच्छे पुरुषार्थ में लगे हुए हैं।
आपने योग की बात कही भ्राता जी, और जब हमारी पढ़ाई पे चर्चा हो रही थी कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में क्या क्या पढ़ाया जाता है, सब्जेक्ट्स हैं, तो आपने बताया था कि 4 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें नॉलेज भी है, ज्ञान भी है, धारणा का भी एक सब्जेक्ट है, और सेवा का भी है, तो इन सभी सब्जेक्ट्स को भी साथ लेना पड़ेगा या केवल योग पे ध्यान
दें? नहीं, चारों सब्जेक्ट को जो एक साथ लेकर चलेंगे
जी,
वो तेजी से उन्नति करेंगे। एक सब्जेक्ट में बहुत मार्क्स ले लें और दूसरों में 20-30 आए तो सफलता नहीं होगी।
तो इसकी प्लानिंग फिर कैसे करें?
हाँ, इसे रोज अव्यक्त मुरली सुनना, सेवाओं पे ध्यान देना, और जो मुरलियों में आ रहा है उसको जीवन में अपनाने का संकल्प रखना कि बाबा अगर कह रहा है बच्चे किसी को दुख न दो तो बस मुझे आज से किसी को दुख नहीं देना है, ये पक्का कर दें, तो धारणाएं भी आती जाएंगी और योग भी बढ़ेगा, और ज्ञान दिनों दिन लेने से मुरली साकार अव्यक्त पढ़ते चलें, तेजी से उन्नति होगी।
क्या ये संभव है प्रताप जी कि लास्ट में आके शीर्ष पे पहुंचा जा सकता है?
शीर्ष पे तो नहीं, पर शीर्ष से थोड़ा नीचे तो रहा है
क्योंकि व्यक्ति के मन में एक निराशा का कई बार भाव आता है कि शायद अब हमसे बहुत देर हो गई और हम नहीं कर पाएंगे, तो शायद वो करना नहीं,
संतोषजनक स्थिति बनाई जा सकती है।
बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रताप जी आज के सुंदर प्रकाश के लिए। वैसे बहुत ही प्यारा सा विषय है कि कैसे लास्ट में कोई व्यक्ति आए और अध्यात्म के शीर्ष पे पहुंचे, जरूर मैं कभी इस पे आपसे प्रकाश लूंगा। आज की सुंदर चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, जो अच्छा विद्यार्थी होता है ना, वो भले ही कभी भी एडमिशन ले, चाहे 2 मास लेट से ले, या 4 मास लेट से ले, या 6 मास लेट से ले, लेकिन फिर भी उसके मन में एक लक्ष्य जरूर होता है कि मुझे टॉप करना है, और वो अपनी संपूर्ण शक्ति लगा देता है टॉप में आने के लिए। और ये कहा गया है कि जो व्यक्ति पूरी लगन के साथ करता है कोई भी प्रयास या अभ्यास, तो ईश्वर की मदद भी उसे अवश्य प्राप्त होती है। और ये तो आध्यात्मिक पथ है ना, स्पिरिचुअल पाथ है। यहाँ पे यदि पूरी दिल से, पूरी लगन से हम कोई कार्य करते हैं तो ईश्वर की मदद उसमें अवश्य मिलती है। तो भले ही कभी भी हम विद्यालय से जुड़े हैं, अब यदि हम शीर्ष पे पहुंचना चाहते हैं तो बस पूरी लगन के साथ, जैसे भ्राता जी कह रहे थे कि चारों ही सब्जेक्ट पे पूरी तरह से ध्यान दें, एक अच्छा लक्ष्य बनाएं, अच्छी प्लानिंग करें जो प्रैक्टिकल भी हो, तो जरूर ईश्वर की मदद से आप वहां तक अवश्य पहुंचेंगे। विषय गहरा है, इसलिए कभी न कभी भ्राता जी के साथ इस विषय को अवश्य चर्चा में लाएंगे। आप बने रहिएगा समाधान कार्यक्रम में हमारे साथ। नमस्कार।